नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण और उनकी आय में वृद्धि को प्राथमिकता देती है। इसके साथ ही सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी में एक जनसभा में देश के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत देश के साथ दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने असम में 19,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी आज सिलचर में 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत पहली पूरक मतदाता सूची अगले सप्ताह प्रकाशित होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक सूची में 60 लाख से अधिक नामों की समीक्षा की गई थी, हालांकि लगभग 15 लाख नामों का निपटारा हो चुका है। भारत ने पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति को देखते हुए ईरान से ऊर्जा और वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने भारतीय जहाजों को जल्द ही होर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति मिलने का संकेत दिया है। श्री फतेह अली ने नई दिल्ली में कहा कि भारत की ईरान से दोस्ती है। उन्होंने कहा कि ईरान का मानना है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के साझा हित निहित हैं।
हमारा मानना है कि ईरान और भारत मित्र हैं, हमारे बीच कई समानताएं हैं और भारत में राजदूत के रूप में मैंने आपसे कहा था कि युद्ध के बाद इस स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मदद की है।
भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार को और मजबूत करने, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने तथा व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलने पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री येयो हान कू के साथ बैठक में भारत कोरिया आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने निवेश बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग का विस्तार करने और अधिक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंधों की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान ओमान के सोहार में हुए हमले में दो भारतीय नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने शोक व्यक्त किया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अग्रिम परीक्षा शहर सूची पर्ची जारी कर दी है। NTA ने स्पष्ट किया है कि ये परीक्षा केवल शहर सूचना पर्ची है, प्रवेश पत्र नहीं। प्रवेश पत्र बाद में जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाएगी। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 12,50,000 शिक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेकर साक्षर प्रमाणित होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कर्तव्य बोध की भावना और मजबूत सामुदायिक भागीदारी से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य वयस्क शिक्षार्थियों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को मजबूत करना है। और महिला हॉकी में भारत ने हैदराबाद में इटली को 1-0 से हराकर FIH हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की मनीषा चौहान ने 40वें मिनट में विजयी गोल दागा। सलीमा टेटे की अगुवाई वाली भारतीय टीम का सामना आज शाम 7:30 बजे फाइनल में इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।